भाग 8, आईना उल्टा दिखे, जब बात गरिमा से नहीं अहंकार से हो। रात 4:50 बजे, हवेली का ऊपरी कमरा। कमरे में हवा अब भी भारी थी, उनकी सांसों की गर्मी अब तक पर्दे की सिलवटों में उलझी हुई थी और दीवारों पर परछाइयां आपस में गुंथी हुई थीं। रैना बिस्तर के एक छोर पर बैठी थी, बाल बिखरे, टॉप का हुक अध खुला और होंठ सूखे। उसकी आंखें अब भी बुझी नहीं थीं, उनमें वो आंच थी जो तकरार के बाद भी शांत नहीं होती। अखिल एक ओर खड़ा था, उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसने अपनी बाहों को पीछे मोड़ा, जैसे अब खुद से कुछ छिपा रहा हो। उसकी शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था और होठों पर अब कोई उभार नहीं था, सिर्फ गहरी बेजुबान थकावट। ये जो हुआ, रैना ने धीरे से कहा, ये किसी कशिश से नहीं हुआ था, ये बस खुद को साबित करने की जिद थी, है ना? अखिल ने एक कड़वा सा ठहाका लगाया। अगर कशिश होती तो शायद हम तलाक के दिन एक दूसरे को देख भी पाते। रैना ने उसकी ओर देखा, आंखें अब भी नर्म नहीं हुई थीं। तुम अब भी खुद को सही मानते हो, है ना? नहीं, अखिल ने तिरछी हंसी के साथ कहा, अब मैं खुद को सही मानना छोड़ चुका हूं, बस ये जान लिया है कि तुम कभी सच्ची नहीं थी। रैना ने तेजी से अपना पर्स उठाया और कंधों पर लपेटा। उसका चेहरा जल रहा था, पर गुस्से से। मैं अगर झूठ होती तो तुम मुझे आज भी यूं नहीं देख पाते। तुम्हारी नफरत में अब भी मेरी देह की भूख बाकी है अखिल, और ये भूख किसी प्रेम की नहीं, किसी अधूरे अहंग की है। अखिल एकदम पास आ गया, तो क्या तुमने मुझे रोका? क्या तुमने कहा कि नहीं? रैना उठ खड़ी हुई। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब मैं साबित नहीं करती। जो देखना हो देख लो, पर मत भूलो, जो औरत गरिमा में सहमति दे दे वो तुम्हारी गुलाम नहीं बन जाती। एक पल की चुप्पी, फिर अखिल ने एक ग्लास उठाया, उसमें बची हुई शराब को देखा और धीरे से फर्श पर पटक दिया। कांच की किरचें बिखर गईं। तुम हमेशा नाटक करती हो रैना, और शायद इसी नाटक में मुझे फिर से खींच लाई। मुझे लगा था मैं अब तुम्हारे पास आकर कुछ साबित कर सकता हूं, लेकिन। उसने अपनी बात बीच में रोक दी। उसकी आंखें अब भी उसी स्त्री को देख रही थीं जिसे वह कभी चाहता नहीं था, पर कभी भूला भी नहीं। रैना ने धीरे से चादर उछाई और खुद को ढक लिया। तुम्हें लगा तुम मुझे नीचा दिखा लोगे, लेकिन क्या महसूस हुआ अब? कोई विजय? अखिल ने उसका चेहरा देखा, वहां कोई आंसू नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं, सिर्फ तेज सांसें और वो लज्जा जो लाचार नहीं थी, सिर्फ थकी हुई थी। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, अखिल ने धीरे से कहा, और शायद यही सबसे खतरनाक है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। कमरे में पेंडुलम घड़ी की टिक टिक अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अचानक रैना ने पास पड़ी अपनी सैंडल उठाई और पहनने लगी। मैं जा रही हूं, उसने कहा। हाँ, यही तो तुम सबसे अच्छा करती हो, अखिल ने कड़वाहट से कहा। कभी खुद चल देती हो, कभी किसी और की छाया में। रैना ठिठकी। उसकी पीठ अब अखिल की ओर थी, लेकिन उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बदल गई थीं। अब अगर एक और शब्द कहा ना तुमने, तो ये अहंकार तुमसे बचा नहीं पाएगा। वो मुड़ी नहीं, लेकिन उसकी आवाज में वो कंपन था जो तिरस्कार और आत्मसम्मान की सीमा रेखा बनाता है। अखिल चुप रह गया। वो जानता था अगर अब कुछ कहा गया तो शायद वो लकीर जो दोनों के बीच अब भी बची थी मिट जाएगी। रैना दरवाजा खोलकर बाहर निकली, लेकिन जाते जाते एक पल को ठिठकी। ये जो रात थी ना, ये किसी मोह की कहानी नहीं थी अखिल, ये बस एक आईना थी जिसमें हमने देखा कि हम दोनों अब भी कितने खाली हैं। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में अब अकेला अखिल था। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में जो खालीपन था वो गहरा होता जा रहा था। कमरे में अब कोई चुप्पी नहीं थी, सिर्फ थका हुआ युद्ध बिखरा पड़ा था तकियों में, चादरों में और उनकी देहों के निशानों में।